भागवत सार की श्रृंखला में तीसरे स्कंद के 11वें अध्याय पर आज चर्चा करेंगे। कृपया श्लोक को दोहराइए और फिर चर्चा प्रारंभ होगी। तदाहुरक्षरं ब्रह्मा सर्वकारणकारणं विष्णुर्धाम परं साक्षात् पुरुषस्य महात्मनः तदाहुरक्षरं ब्रह्मा सर्वकारणकारणं विष्णुर्धाम परं साक्षात् पुरुषस्य महात्मनः तदाहुरक्षरं ब्रह्मा सर्वकारणकारणं विष्णुर्धाम परं साक्षात् पुरुषस्य महात्मनः अक्षरम अच्युत ब्रह्म परम सर्व कारण समस्त कारणों का कारणम परम कारण विष्णु धाम विष्णु का आध्यात्मिक निवास परम परम साक्षात निसंदेह पुरुषस्य पुरुष अवतार का महात्मनः महाविष्णु का अनुवाद और तात्पर्य श्री भक्तिवेदांत स्वामी श्रील प्रभुपाद के द्वारा अनुवाद। इसलिए भगवान श्री कृष्ण समस्त कारणों के आदि कारण कहलाते हैं। इस प्रकार विष्णु का आध्यात्मिक धाम निसंदेह शाश्वत है और यह समस्त अभिव्यक्तियों के उद्गम महाविष्णु का भी धाम है। तात्पर्य, महाविष्णु जो कि कारण अर्णव में योग निद्रा में शयन करते हैं और अपनी श्वास के द्वारा असंख्य ब्रह्मांडों को उत्पन्न करते हैं, भौतिक जगतों की क्षणिक अभिव्यक्ति के लिए महत्त्व में क्षण भर के लिए ही प्रकट होते हैं। वे भगवान श्री कृष्ण के स्वांश हैं और इस तरह भगवान कृष्ण से अभिन्न होकर भी भौतिक जगत में अवतार के रूप में उनका वैधानिक प्राकट्य अस्थाई है। भगवान का आदि रूप वस्तुतः स्वरूप या असली रूप है और वे वैकुंठ जगत में नित्य वास करते हैं। यहाँ पर प्रयुक्त महात्मनः शब्द महाविष्णु को सूचित करने के लिए आया है और उनका असली स्वरूप भगवान कृष्ण जो परम कहलाते हैं, जिसकी पुष्टि ब्रह्म संहिता में हुई है। ईश्वर परमा कृष्ण सच्चिदानंद विग्रह अनादिरादिर गोविंद सर्व कारण कारणम। परमेश्वर अर्थात आदि भगवान कृष्ण हैं जो गोविंद कहलाते हैं। उनका रूप शाश्वत आनंदमय तथा ज्ञानमय है और समस्त कारणों के आदि कारण हैं। ओम अज्ञान तिमिरांधस्य ज्ञानांजन शलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्री गुरवे नमः। श्री चैतन्य मनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपः कदा मह्यं ददाति स्वपदांतिकं वंदेहं श्रीगुरौ श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगणरघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधाकृष्णपादां सहगणललिता श्रीविशाखान्वितांश्च हे कृष्णकरुणासिन्धु दीनबन्धु जगत्पते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमस्तुते तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरि प्रिये वांछाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिंधुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः नमाउं विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्तस्वामिनिति नामिने नमस्ते सारस्वतीदेवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्यदेशतारिणे जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभो नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवास आदि गौर भक्त वृंद हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा। तो पिछले अध्याय में मैत्री मुनि ने मनुओं का वर्णन करने के लिए कहा कि अब वो मनुओं का वर्णन करेंगे, कैसे मनु प्रकट होते हैं। तो उनका वर्णन करने के पहले जो वो काल का वर्णन कर रहे थे उसको वो पूर्ण करेंगे इस अध्याय में, और फिर आगे चलकर वो मनुओं का वर्णन करेंगे। तो इस अध्याय पर चर्चा से पहले सनातन गोस्वामी की प्रार्थनाओं को दोहराएंगे और फिर आगे बढ़ेंगे।
सर्वशास्त्राधिपीयूषा सर्ववेदैकसत्फला सर्वसिद्धान्तरत्नाढ्या सर्वलोकैकदृक्प्रदा सर्वभागवतः प्राण श्रीमद्भागवतः प्रभो कलिध्वान्तोदिदादित्या श्रीकृष्णा परिवर्तिता परमानन्द पाठाय प्रेम वर्षक्षराय ते सर्वदा सर्वसेव्याय श्रीकृष्णाय नमोस्तुते। मदेकबन्धो मत्संगे मद्गुरु मन्महाधन मन्निस्तारकमद्भाग्य मदानन्द नमोस्तुते। असाधु साधु तदाई अतिनीचोचतः कर हानमुञ्च कदाचिन्मा प्रेम्णारुत्कण्ठयोऽस्फुरा।
हरे कृष्ण। तो काल की, काल का विभाग या काल की गणना कैसे की जाती है, तो इस अध्याय में मैत्री मुनि समझा रहे हैं। तो पहले करीब 14 श्लोकों में मैत्री मुनि काल की गणना बताते हैं कि कैसे सूक्ष्म से सूक्ष्म, बहुत थोड़े से, और कैसे बहुत आगे तक ये काल जाता है मनुष्यों के स्तर पर। और फिर विदुर मुनि प्रश्न करते हैं, और विदुर के प्रश्नों पर उनका प्रश्न था कि आपने जो बताया ये कल्प के अधीन रहने वालों के लिए है, लेकिन कुछ ऐसे भी लोग हैं जो कल्प के परे हैं, जिनको कल्प का प्रभाव नहीं होता, तो ऐसे लोगों पर कैसे ये कार्य करता है या उनका कैसे समय होता है उसको बताइए। तो फिर 15वें श्लोक से आगे अंतिम श्लोक तक, ये जो श्लोक हमने आज पढ़ा इस तक वो वर्णन करते हैं इस जगत में ब्रह्मा जी के काल तक का, और फिर अंतिम विभाग में वो थोड़ा बहुत हमें आभास कराते हैं आध्यात्मिक जगत के काल का, और अंत में वो इसका उद्देश्य कहते हैं कि ये जो सब उन्होंने बताया उसका उद्देश्य जो हमने श्लोक पढ़ा ये समझाना कि श्री कृष्ण सर्व कारण कारण है। तो ऐसे ये पूरा अध्याय बटा हुआ है, प्रमुखता विभाग किया है समय का। तो पूरे अध्याय में मैत्रेय मुनि ने जो समय की एकदम छोटी सी संख्या है जिसको त्रुटि कहते हैं, उससे लेकर ब्रह्मा जी के जीवन काल तक जिसको परार्ध कहते हैं उस तक पूरा वर्णन कर दिया, और फिर आगे आध्यात्मिक जगत का। तो सबसे पहले वो बताते हैं कि इस जगत में सबसे छोटी चीज जो भौतिक अस्तित्व होता है भौतिक जगत, तो सबसे छोटी चीज परमाणु कही जाती है। प्रभुपाद लिखते वैज्ञानिक भी इसको स्वीकार करते हैं एटम। तो परमाणु को लिया जाता है, और फिर वो कहते हैं कि जो परमाणु होते हैं ये दिखते नहीं है, दिख नहीं सकते हैं, बहुत छोटे हैं, बड़े सूक्ष्म हैं, लेकिन जब 6 परमाणु एक साथ मिल जाते हैं तो उनको सूर्य की किरणों में देखा जा सकता है। जब सूर्य की किरण जैसे अभी अंदर आ रही है खिड़की से, तो इसमें ऐसे 6 परमाणुओं को मिलकर देखा जा सकता है। और फिर वो वर्णन करते हैं कि कैसे ये जो परमाणु हैं इनका जैसे जैसे विस्तार होता है या इनका जो चलन होता है उसके आधार पर समय का वर्णन किया जाता है। तो फिर समय का वर्णन करना प्रारंभ करते हैं। तो वो कहते हैं कि ये जो 6 परमाणु हैं ये मिलकर एक त्रुटि बनाते हैं, और फिर ऐसी 100 त्रुटियां मिलकर एक वेद बनता है। अभी देखिए ये जो संख्या का वर्णन हो रहा है ये हमारे जो भौतिक या जो आधुनिक काल में हम सेकेंड्स और मिनट्स इत्यादि देखते हैं उससे बहुत कम का है। अभी ये जो वर्णन होगा अभी आप देखेंगे कि कैसे आगे आगे चलकर कहाँ तक सेकेंड्स तक पहुँचते हैं, अभी तो बहुत दूर हैं सेकेंड से। कहना चाहिए सेकेंड्स का 1875वां भाग चल रहा है। तो ऐसे 100 त्रुटियां मिलकर एक वेद बनता है, और ऐसे 3 वेद का एक लाभ होता है। लाभ जैसे हम लोग इसको सुन चुके हैं साधु संघ के विषय में, लाभ मात्र साधु संघ सर्व सिद्धि है। तो ये लाभ है, क्षण से भी एक सेकंड से भी बहुत कम। तो ऐसे 3 वेद मिलकर एक लाभ बनता है, फिर 3 लाभ मिलकर एक निमेश बनता है। जैसे चैतन्य महाप्रभु कहते हैं ना, निमेश, एक निमेश काल तक का समय भी युग के बराबर प्रतीत हो रहा है। तो ये निमेश 3 लाभ बनकर होता है, और फिर जब 3 निमेश बन जुड़ते हैं या 3 निमेश का एक क्षण होता है। अभी तक हम सेकंड्स पर नहीं पहुंचे हैं, ये केवल अभी इसके अंदर ही चल रहा है। और फिर जब 5 क्षण मिलते हैं, 5 क्षण का एक काष्ट होता है। अब ये काष्ट ये 8 सेकंड का होता है। तो अब हम सेकंड्स पर आ गए हैं, अभी तक उसके पहले थे। तो एक काष्ट यानी 8 सेकंड्स। तो अभी हम लोग हमने प्रारंभ किया त्रुटि से, त्रुटि के बाद हम लोग वेद, वेद के बाद लाभ, लाभ के बाद निमेश, निमेश के बाद क्षण, और अब क्षण के बाद काष्ट। तो ऐसे ये एक 8 सेकंड्स का होता है, और फिर ऐसे 15 काष्ट मिलकर एक लघु बनता है, एक लघु कहलाता है। तो ये लघु करीब 2 मिनट का होता है, 2 मिनट। तो ऐसे 15 काष्ठ मिलकर एक लघु बनता है और ऐसे 15 लघु का एक दंड बनता है। दंड अर्थात एक करीब 30 मिनट का समय, और ऐसे दो दंड मिलकर एक मुहूर्त बनता है। ये सारा वर्णन श्लोकों में किया है, हम आपको सार में बता रहे हैं। तो ऐसे दो दंड मिलकर एक मुहूर्त बनता है और करीब 6-7 मुहूर्त मिलकर एक प्रहर बनता है। प्रहर मतलब करीब 3 घंटे का समय होता, प्रहर कहते हैं उसको। और ऐसे 4 प्रहर का एक दिन होता है और 4 प्रहर की ही रात होती है। तो 24 घंटे जो बनाते हैं ये 8 प्रहर हैं, इसीलिए करीब 3 घंटे का एक प्रहर होता है। तो ये अभी वर्णन चल रहा है। तो ऐसे दो प्रहर अर्थात 4 प्रहर दिन में और 4 प्रहर रात्रि में, 8 प्रहर होते हैं जिसका एक दिन बनता है। और ऐसे 15 दिनों का एक पक्ष बनता है। तो दो पक्ष होते हैं, एक शुक्ल पक्ष और एक कृष्ण पक्ष। तो 15 दिनों का ऐसे एक पक्ष होता है, दो पक्षों का एक महीना होता है मास जिसे कहते हैं, और फिर दो महीने मिलकर एक ऋतु बनाते हैं, और फिर 6 ऋतुएं मिलकर एक वर्ष बनाती हैं। तो देखिए आगे पूरे वर्ष तक आ गए। कहां से शुरू हुआ था? त्रुटि से। सो त्रुटि, फिर वेद, फिर लाभ, फिर क्षण, फिर काष्ठ, फिर काष्ठ के आगे क्या है? लघु। फिर लघु के आगे दंड, दंड के आगे मुहूर्त, मुहूर्त के आगे प्रहर, प्रहर के आगे पक्ष, दिन, दिन के आगे पक्ष, पक्ष के आगे महीना, महीने के आगे ऋतु, और ऋतुओं के आगे फिर 6 ऋतुओं का एक वर्ष होता है। ऐसे मनुष्यों का साधारणतः 100 वर्ष जीवन होता है, ऐसा वर्णन भागवत में करते हैं। तो ये हमारा समय का बंटवारा किया गया। तो मूलतः इस समय को बताकर इसका उद्देश्य क्या है वो आगे बताएंगे, क्यों ये सब वो बता रहे हैं, क्यों ये तुलना कर रहे हैं। तो जब उन्होंने ऐसे सब बंटवारा कर दिया तो विदुर ने प्रश्न किया कि बहुत अच्छी तरह आपने बताया, लेकिन कल्प के परे भी तो कुछ लोग हैं, तो उनका भी आप हमें वर्णन कीजिए। तो उसके बाद विदुर को मैत्री मुनि ब्रह्मा जी के स्तर का वर्णन करना प्रारंभ करते हैं। तो वो कहते हैं कि ये जो मैंने आपको एक वर्ष बताया, तो ऐसे एक वर्ष पूरा ये देवताओं का केवल एक दिन होता है, सुबह और शाम, 6 महीने दिन, 6 महीने रात, बस। तो हम लोग यहाँ एक वर्ष बीत जाता है, देवताओं का केवल एक दिन बीतता है। ये सुनने में बड़ा अजीब लग रहा है ना, ऐसे कैसे हो सकता है, एक वर्ष बीत गया यहाँ पे, उनका केवल सुबह और शाम हुई, ऐसा तो हो ही नहीं सकता। ऐसा बहुत संभव है। वर्षा ऋतु के समय हम लोग देखते हैं कि जब अंधकार होने लगता है तो कई कीड़े जन्म लेते हैं, और उनका जीवन कितना है, जन्म लेते हैं सूर्योदय से पहले मर जाते हैं, उतना ही जीवन है उनका। अर्थात शाम को करीब 5-6 बजे जन्म लेना, सुबह 6 बजे मर जाना, 12 घंटे का जीवन। और उस 12 घंटे में ऐसा नहीं है कि वो लोग बस छोटे से रहते मर जाते हैं, उसी में वो बढ़ते हैं, उसी में वो प्रेम आदि करते होंगे, उसी में विवाह करते होंगे, उसी में संतान उत्पन्न, और उसी में बूढ़े होके मर जाते हैं। तो 12 घंटे का उनका जीवन है। अगर उनको बताया जाए कि अरे एक ऐसा भी प्राणी है मनुष्य, जानते हो कितना होता है, ये जो हमारा सारा जीवन है केवल उनकी एक रात है बस, तो विश्वास करेंगे? वो ऐसे कैसे हो सकता है, इतना पूरा जीवन निकाल देते हैं और ये केवल एक रात है उनकी। बोले हाँ, मनुष्य ऐसा खतरनाक प्राणी है कि उसकी एक रात ही केवल है, इतना विशाल है। या फिर चींटियों का वर्णन किया जाए तो चीटियां जब कहें कि समझ लीजिए अभी हम लोग यहाँ बैठे हुए हैं, चर्चा कर रहे हैं, नीचे कहीं चीटियों की मीटिंग हो रही है, और उनमें से एक बुद्धिमान चीटी दूसरों को बताए कि जानते हो ऊपर एक लोक है ना, जहाँ हम जाते हैं वहाँ पर एक मनुष्य नाम का हैवान राक्षस है, तो कितना बड़ा है, उसका एक पाँव अगर पाँव हमारे ऊपर पड़ जाए तो 2000 चीटियाँ मर जाएं, इतना बड़ा उनका पाँव है। तो कोई विश्वास करेगी चीटी? ऐसा हो सकता है? इतना बड़ा विशाल, हाँ बहुत बड़ा है, पाँव के नीचे 2000, अगर लेट जाए तो हजारों चीटियाँ मर जाएं। लेकिन ये सत्य है ना हमारे लिए, हम लोग विश्वास कर सकते हैं। तो इसी तरह देवताओं का जो दिन होता है और रात होती है, ये हमारे एक वर्ष के बराबर है। और ऐसे अब वो युगों का वर्णन करते हैं, कलयुग, द्वापर, त्रेता और सतयुग, इसको एक चतुर्युग कहते हैं। तो कलयुग में 432,000 साल होते हैं मनुष्यों के, 432,000 साल, और फिर उसको और 432,000 साल जोड़ा जाए तो द्वापर बन जाता है 864,000, उसमें और 432,000 जोड़ दीजिए तो वो त्रेता बन जाता है 12,96,000, और फिर उसमें और 432,000 जोड़ दीजिए तो वो सतयुग हो जाता है 17,21,000, अंदाजा। तो ऐसे उन्होंने बताया कि ये चार युग हैं और ये इसको एक चतुर्युग कहते हैं। अब एक चतुर्युग के, ये एक चतुर्युग होता है, ऐसे जब 71 चतुर्युग हो जाते हैं तो एक मनु का समय कहलाता है, जिसको मनवंतर कहते हैं, मनुओं का समय। और फिर ऐसे जब 14 मनु आ जाते हैं, अर्थात 1000 चतुर्युग निकल जाते हैं, वो ब्रह्मा का एक दिन है। कितना अच्छा लग रहा है ना सुन के, ब्रह्मा जी का एक दिन 1000 चतुर्युग तक चलता है। पता नहीं हम लोगों के कितने जन्म हो जाएंगे, 432,000 साल ही ले लीजिए, चतुर्युग तो छोड़ दीजिए, और फिर 1000 चतुर्युग, केवल 432,000 साल ले लीजिए, और फिर उसमें आप मानिए कि आपके कितने जीवन निकलेंगे 432,000 साल में, और फिर 432,000 साल ये एक कलयुग है, फिर चतुर्युग, फिर 1000 चतुर्युग। ब्रह्मा जी का जीवन बड़ा लंबा है। जब रेवती के पिता ब्रह्मा जी के पास पहुँचे थे अपनी पुत्री के लिए एक अच्छा वर देखने के लिए, तो वो केवल 19 मिनट वहाँ रहे थे, उनको इंतज़ार करना पड़ा था 19-20 मिनट, क्योंकि ब्रह्मा जी उस समय नृत्य देख रहे थे तो बिजी थे। तो जब पहुँचे बोले ब्रह्मा जी से मिलना है, तो सेक्रेटरी ने कहा कि रुक जा, बिजी है, क्या कर रहे हैं, नृत्य देख रहे हैं। तो वो खड़े रहे, इंतज़ार किया, और कुछ समय बाद ब्रह्मा जी ने कहा अच्छा अच्छा आओ, क्या बात है। तो उन्होंने कहा, उनके मन में कुछ लोगों के नाम थे कि क्या ये मेरे बेटी के लिए, मेरी पुत्री के लिए ये सही है या ये सही है या ये सही है, ऐसे 8-10 नाम उनके थे, ब्रह्मा जी से पूछने गए थे। तो ब्रह्मा जी के पास गए और जाके उन्होंने कहा कि मेरी पुत्री के लिए आप बताइए कौन सा अच्छा वर है। तो ब्रह्मा जी ने जैसे ही सुना वो हंसने लग गए जोर जोर से, तो इनको समझ नहीं आया कि क्या हुआ। तो उन्होंने कहा, अरे तुम जो मन में सोच रहे हो जिन लोगों के नाम, वो सब तो कब के चले गए, वो सब खत्म हो गए, मर गए, उनका नाम भी नहीं कोई जानता। अभी तुम जानते नहीं हो 27 चतुर्युग बीत चुके हैं, तुम केवल यहाँ खड़े रहे मेरा इंतजार करते, 27 चतुर्युग चले गए, ब्रह्मा जी कहते हैं। ये 9वें स्कंद में कथा आती है जहाँ बलराम जी के विवाह की। उन्होंने कहा 27 चतुर्युग चले गए हैं। अब सोचो, मतलब वो राजा जो जिनका जीवन 100-200 वर्ष का हो, लाखों वर्ष बीत गए, कोई नाम भी नहीं जानता अभी। तो इसलिए ब्रह्मा जी ने कहा अभी नीचे जाओ, बलराम जी हैं, भगवान हैं, तो उनसे विवाह करो, वही एक योग्य पुरुष है। तो फिर उस समय अपनी पुत्री को लेके बलराम जी के सामने वो प्रकट हुए, उन्होंने कहा मेरी पुत्री से विवाह करो। तो उनकी पुत्री बहुत लंबी थी, बलराम जी ने तो भगवान है लेकिन वो इस समय द्वापर के व्यक्ति की तरह आचरण कर रहे थे, तो उनका आकार भी उतना ही था और ये तो थी दूसरे युगों की बड़ी लंबी। तो बलराम जी ने अपना हल लिया, उसके कंधे पर रखा और उसको खींच दिया नीचे। हाँ, अभी लेवल में आ गए, अभी ठीक है, फिर विवाह किया। तो इस वर्णन से पता चलता है कि ब्रह्मा जी का समय कितना बड़ा है। तो 27 चतुर्युग निकल गए केवल 15-20 मिनट खड़े रहने में, वहां पर 19 मिनट कुछ खड़े रहे अगर कैलकुलेशन हम लोग करें तो। तो ऐसे ब्रह्मा जी के समय का वर्णन मैत्री मुनि करने लगे कि ये उनका एक कल्प है। कल्प मतलब दिन, ब्रह्मा जी के एक दिन को कल्प कहते हैं। और वो वर्णन करते हैं कि अलग अलग कल्प अलग अलग नाम होते हैं। प्रभुपाद तात्पर्य में पद्म पुराण से कहते हुए, पद्म पुराण को कोट करते हुए लिखते हैं कि पद्म पुराण में लिखा है कि अलग अलग कल्पों के अलग अलग नाम होते हैं। जैसे जो पहला कल्प होता है जिसमें ब्रह्मा जी जन्म लेते हैं या जिसमें पद्म खिलता है उसको पद्म कल्प कहते हैं, पद्मजा भी कहा जाता है। पद्मजा जिनका जन्म पद्म से हुआ है, से ब्रह्मा जी का एक नाम है, तो पद्म कल्प भी कहा जाता है। या फिर इस युग में जो अभी इस कल्प में पहला अवतार श्वेत वराह का हुआ तो इसलिए श्वेत वराह कल्प कहा जाता है। तो जिस कल्प में पहला अवतार होता है भगवान का, जो भी पहला अवतार, उसके नाम पर कल्प हो सकता है। तो कोई वामन कल्प हो सकता है, कोई नरसिंह कल्प हो सकता है, ये वराह कल्प है। तो ऐसे अलग अलग कल्प होते हैं। तो ऐसे ब्रह्मा जी का एक दिन होता है और एक रात्रि, और ऐसे 30 दिनों का एक महीना और एक वर्ष का 12 महीनों का एक वर्ष। ऐसे ब्रह्मा जी का जीवन दो भागों में बंटता है, 50-50 वर्ष, जिसको परार्ध कहते हैं। पूर्व परार्ध अर्थात पहले के 50 वर्ष, और फिर पूर्वोक्त या उसके आगे का परार्ध जो अगले 50 वर्ष। तो मैत्री मुनि बताते हैं कि अभी ब्रह्मा जी का 50 वर्ष पूरे हो गए हैं, आज जन्मदिन है उनका, अभी उनका जन्मदिन चल रहा है ब्रह्मा जी का, बड़ा लंबा चलेगा, 1000 चतुर्युग तक चलेगा। अभी तो केवल कितने चतुर्युग हुए हैं इस कल्प में? कोई जानते हैं कितने चतुर्युग हो गए इस कल्प में? हाँ नहीं, 28 तो इस मन्वंतर में हुए हैं चतुर्युग, इस कल्प में मतलब दिन में। ये कौन सा मनु चल रहा है? सातवां। तो सातवां मनु मतलब उतने सारे हो गए, 6 मनुओं के 71 चतुर्युग चले गए, 71 ऐसे 6 मनुओं के चले गए। सातवें मनु का 28 हुआ है अभी, तो अभी और 7 मनु आने, 6 मनु और आने बाकी हैं, 14 मनु होंगे। तो ब्रह्मा जी का दिन बहुत लंबा बाकी है। तो आज उनका जन्मदिन है, इसीलिए हम लोग को केक वेक खा लेना चाहिए। तो ब्रह्मा जी का आज जन्म दिवस है और अभी करीब दोपहर का समय है ब्रह्मा जी का, ये दोपहर चल रही है उनकी। ये भी कैसे जान सकते हैं, 14 मनुओं में से 7वें मनु का समय चल रहा है तो स्वाभाविक है दिन में से दोपहर का समय है। तो ऐसे ब्रह्मा जी का जीवन होता है 100 वर्षों का, पूर्व परार्ध पहले 50 वर्ष और अगले 50 वर्ष। वैसे हम लोग यहाँ जगन्नाथ जी की पूजा कर रहे हैं, इसीलिए इस संदर्भ में ये भी कहना चाहेंगे कि ब्रह्मा जी के पहले 50 वर्ष में जगन्नाथ जी प्रकट नहीं होते। पहले 50 वर्ष में यही जगन्नाथ नील माधव के रूप में प्रकट होते हैं, नील माधव, बहुत सुंदर रूप भगवान का। और फिर अगले 50 वर्षों के लिए अब जगन्नाथ का रूप लेते हैं वो। तो जगन्नाथ जी ये इस दिन में ही प्रकट हुए हैं। तो ऐसे ब्रह्मा जी का जीवन करीब 100 वर्ष का है। और फिर वो वर्णन करते हैं कि ये सारा अभी कितना समय आपने देख लिया, त्रुटि से लेकर चतुर्युग, ये वो, और ब्रह्मा जी का जीवन 100 वर्ष, ये सब भगवान के स्तर पर एक क्षण मात्र है। वो कहते हैं बस इतने करोड़ों करोड़ों साल भगवान के लिए क्षण मात्र है। मैत्री मुनि कहते हैं अब क्षण मात्र है, कैसे कह सकते हैं, क्योंकि ये जो तुलना है ये भौतिक स्तर की है। जब हम कहते हैं इतने का निमेश होता, इतने का ये, इत्यादि इत्यादि, ये भौतिक है। इसकी तुलना हम आध्यात्मिक समय से नहीं कर सकते। वैसे आध्यात्मिक जगत में समय है ही नहीं, और जो समय है वो केवल भगवान की सेवा के लिए है। इस तरह से प्रभावी समय वहां नहीं है। तो समय को कैसे फिर तुलना कर दी मैत्री मुनि ने कि ये जो ब्रह्मा जी का समय है ये भगवान के एक क्षण के समान है। ब्रह्मा जी वैसे ब्रह्म संहिता में भी कहते यस्यैव निष्काल अथावलंब्य, तो ये इनका केवल एक थोड़ा सा समय है। तो कैसे तुलना कर दी एक भौतिक मापदंड की भगवान के मापदंड से? तुलना नहीं की है, हम लोगों को एक आभास कराने के लिए कि क्या भगवान का समय है, भगवान का क्या स्तर है। वो इसको कहते कि ये सारा ब्रह्मा जी का जीवन एक क्षण के समान है। तुलना नहीं की जा सकती भौतिक और आध्यात्मिक की। जब भी आध्यात्मिक चीजों को समझाने के लिए भौतिक उदाहरण दिए जाते हैं, ये इसलिए क्योंकि हमें आध्यात्मिक चीजें पता नहीं है। जैसे जब श्री कृष्ण के रंग का वर्णन किया जाता है तो कहा जाता है वो घनश्याम है, या कभी कभी लोग कहते काले हैं, या काले घने बादल के समान उनका रंग है। उनका रंग वैसा नहीं है। भगवान का रंग श्याम वर्ण है, और श्याम वर्ण की व्याख्या उपनिषदों में की गई है। वो वर्ण जिससे बाकी जो सारे रंगों को मिलकर रंग बना है वो श्याम वर्ण कहलाता है। दूसरे शब्दों में जिस वर्ण से, जिस रंग से बाकी सारे रंग आते हैं वो श्याम वर्ण कहलाता है। तो अब उसको हम समझ नहीं सकते, वो आध्यात्मिक है। इसीलिए तुलना करने के लिए कहा जाता है घनश्याम, तुलनात्मक, एक उपमा या एक हमें आभास दिलाने के लिए कि क्या है ये। जैसे जब आनंद की तुलना की जाती है तो कहा जाता है कि इस जगत का सारा आनंद, एक भौतिक, इस पृथ्वी का सारा आनंद एक व्यक्ति को, एक युवक को दे दिया जाए जिसको कोई बीमारी नहीं, कोई कष्ट नहीं। अब उस आनंद की तुलना करते कहते हैं कि उससे 100 गुना ज्यादा आनंद देवताओं का है जो पृथ्वी पर रहते हैं, उससे 100 गुना आनंद जो स्वर्ग में देवता रहते हैं उनका है, उससे 100 गुना आनंद इंद्र का है, उनसे 100 गुना बृहस्पति, उनसे 100 गुना आनंद देव ऊंचे लोकों में रहने वाले ऋषि मुनि, उनसे 100 गुना ब्रह्मा जी, और फिर उससे भी 100 गुना आनंद ब्रह्म आनंद है, और फिर आध्यात्मिक आनंद का कहना क्या। ये तैत्तिरीय उपनिषद में वर्णन किया गया। तो इसलिए तुलना की गई है, तो इसका अर्थ ये नहीं है कि वो एक क्षण के समान होता है, कि हम उसको नापने लगे आध्यात्मिक जगत के समय को। तो ऐसे मैत्री मुनि इसका वर्णन करते हैं। तो अब वो उद्देश्य पर आ रहे हैं कि ये जो वर्णन है तो क्या उद्देश्य था, भगवान की महानता को स्थापित करना, आध्यात्मिक जगत का वर्णन करना, आध्यात्मिक जगत क्या है, कैसे है, उसको बताना। तो वो बताने लगे कि भगवान के लिए एक क्षण है, मतलब भगवान की महानता को प्रकट कर रहे हैं, जीव के मूल स्वरूप को प्रकट कर रहे हैं। तो समय का वर्णन करते हुए उन्होंने समय का वर्णन किया। इसके कुछ कारण थे। पहला, भगवान की स्थिति को समझाना चाहते थे कि देखिए भगवान की क्या स्थिति है, ये जो सारा समय है ये केवल महाविष्णु सांस बाहर लेते हैं तो ब्रह्मांड बन जाते हैं, महाविष्णु सांस अंदर लेते हैं सारे ब्रह्मांड समाप्त, बस इतना समय है ब्रह्मा जी के पूरे जीवन का, उसी में सब कुछ होता है, ये भौतिक जगत बनता। भी हम लोग पिछले कुछ अध्यायों में सर्ग पढ़ रहे हैं, तो ये सारा जो कुछ होता है, महत्त्व आना, ये आना, उसके बाद सारे गुण प्रकट हुए, फिर सारे इंद्रियां, ये वो इत्यादि, फिर ब्रह्मा जी ने रचना की, ये सब केवल सांस बाहर और सांस अंदर, ब्रह्मा जी समा समाप्त, सब कुछ समाप्त। तो भगवान की महानता को बताने के लिए यह समय का वर्णन किया गया। दूसरा कारण ये समझाने के लिए कि कैसे ये जो काल है, मैत्री मुनि कहते हैं ये भगवान के अधीन है, भगवान की शक्ति है, हम सब इसके प्रभाव में हैं, भगवान इसके प्रभाव में नहीं है। तो ये समझाने के लिए कि जब भगवान इस जगत में आते हैं तो वो काल के प्रभाव में नहीं आते और ना ही काल के प्रभाव से बाध्य होकर जन्म लेते हैं, हम सबको लेना पड़ता है। हमारा शरीर काल के प्रभाव से चलता है, भगवान का नहीं चलता। क्यों? क्योंकि काल उनके अधीन है, वो काल के अधीन नहीं है। तो ये एक महत्वपूर्ण बात समझाने के लिए उन्होंने काल का वर्णन किया। और एक महत्वपूर्ण बात जो बोलते बोलते उन्होंने बीच में कह दी, और वो ये थी कि सूर्य जीवन को कम करता है। तो काल को बताते बताते उन्होंने ये कह दिया, अर्थात वो ये दर्शाना चाहते हैं कि जानना चाहिए कि काल के प्रभाव से हमारा जीवन क्षीण हो रहा है। आयुर हरति वै पुंसा उद्यन अस्तम चयन नसो, इसको हम पढ़ चुके हैं तीसरे अध्याय में। तो आयुर हरति वै पुंसा, सभी लोगों की आयु को हर रहा है। उद्यम अस्तम चयन नसो, कौन? सूर्य उदय होता है और अस्त होता है, आयु को हर लेता है। तस्यर्थ यक्षणो नीत उत्तम श्लोक वार्तया, केवल उनकी नहीं हरता जो अपना समय उत्तम श्लोक वार्तया भगवान श्री कृष्ण की कथा में लगाते हैं, उनके जीवन को नहीं हरता, बाकी सबके जीवन को हर रहा है। तो प्रभुपाद बहुत सुंदर तरीके से समझाते कि अरे क्यों उनके जीवन को क्यों नहीं हर रहा, क्या भक्त मरते नहीं है? उनके जीवन को नहीं हर रहा क्योंकि वो जीवन का सदुपयोग कर रहे हैं। वो कृष्ण कथा सुनकर, भगवान की कथा सुनकर अपने जीवन के उद्देश्य की पूर्ति की ओर, शाश्वत जीवन की ओर बढ़ रहे हैं, समय के परे जा रहे हैं, इसीलिए उनके जीवन को नहीं हरता। नहीं तो बाकी सबकी आयु और हरती वाई पुमसा, बाकी सबका वो हरता है तो उनका नहीं हरता। तो ये कैसे हो सकता है कि उनका भी नहीं हरता वो? तो बहुत सुंदर। और केवल सुनने से, क्या भगवान की कथा सुनने से हम लोग शाश्वत जीवन को जा सकते हैं, हमारे चेतना पर प्रभाव हो सकता है? प्रभुपाद एक बहुत सुंदर उदाहरण देते हैं। आप डॉक्टर के पास जाते हो, आप इंजेक्शन लगवाते हो, अब इंजेक्शन में इतना सा वो एक जरा सी सुई होती है, जरा सी अंदर जाती है, 10 ml 20 ml पानी अंदर जाता है और तो कुछ नहीं, कोई बहुत बड़ी चीज तो नहीं होती, लेकिन वो सारे शरीर में आपके जहां भी कष्ट है वो दूर कर देता है। या छोटी सी गोली हम खाते हैं, कहीं पर दर्द है बड़ी तेज, लेकिन छोटी सी गोली है, एक इंजेक्शन, सब ठीक। प्रभुपाद कहते हैं उसी तरह केवल कृष्ण कथा सुनते हैं हम लोग कानों से, तो वो सुनने मात्र से हमारी चेतना शुद्ध हो जाती है। तो इसीलिए जो लोग कृष्ण कथा सुनते हैं उन पर काल का प्रभाव नहीं, क्योंकि वो शाश्वत जीवन की ओर बढ़ रहे हैं। ये समझाने के लिए फिर मैत्री मुनि ने इस काल को वर्णन किया। और एक बात महत्वपूर्ण कि ये जो सृष्टि की रचना है और प्रलय है, ये भी काल के प्रभाव से होता है। तो इसको समझाने के लिए मैत्री मुनि ने कहा, तो सृष्टि की रचना और प्रलय, प्रलय भी हो जाता है। प्रभुपाद तात्पर्य में लिखते हैं एक श्लोक के कि प्रलय होता है अर्थात सब कुछ समाप्त हो जाता है, लेकिन मूर्ख जीव ये सोचता है कि मैं इस जगत में सुखी रह सकता, आनंद ढूंढता इस जगत में जहां पर जो बनता है वो प्रलय हो जाता है, सब कुछ समाप्त होने वाला। तो जब सब कुछ समाप्त होने वाला है तो उसमें आनंद कैसे मिलेगा? भगवद गीता में भगवान कहते हैं कि वो मूर्ख व्यक्ति है जो ऐसी चीजों में आनंद लेता है जिसका आदि है और अंत है। आद्यंतवंत कौन्तेय न तेषु रमते बुधा, जो बुद्धिमान व्यक्ति है वो इसमें रमण नहीं करता, लेकिन जो मूर्ख है वो इसमें रमण करता। यही संस्पर्श जाप हो गया दुख यो नय एवते आद्यंतवंत कौन्तेय न तेषु रमते बुधा। तो जो बुद्धिमान व्यक्ति है वो इसमें रमण नहीं करता, मूर्ख क्या करता है? यही संस्पर्श जाप होगा, संस्पर्श से, इंद्रियों और इंद्रियों के विषय के संस्पर्श से उत्पन्न होने वाले भोग में यही संस्पर्श जाप होगा, दुख योनय एवते, केवल दुख भोगता रहता है ये मानकर कि मेरे को इसमें आनंद मिलेगा। आंखों से कुछ सुंदर रूप देखकर आनंद मिलेगा, कानों से कुछ अच्छी आवाज सुनकर आनंद मिलेगा, स्पर्श करने से आनंद मिलेगा, यही संस्पर्श जाप होगा, दुख योनय, भगवान कहते केवल दुख मिलने वाला है। इसीलिए जो आदि है जो अंत है, आद्यंत वंत कौन्तेय न तेषु रमते बुद्ध, अगर बुद्धिमान है तो उसमें आनंद मत लीजिए जिसका एक आदि है और जिसका अंत है। प्रभुपाद लिखते हैं इस भौतिक जगत का प्रलय होने वाला अंत है, तो भगवान के अनुसार हमें इसमें रमण नहीं करना चाहिए। न तेषु रमते बुद्ध, तो फिर क्या करना चाहिए, भगवान की कथा का श्रवण करना चाहिए जिससे हमारी जो आयु सूर्य हरण कर रहा है वो हरण ना हो। तो इस तरह से उन्होंने समय का वर्णन किया। और एक महत्वपूर्ण कारण जिसके लिए उन्होंने समय का वर्णन किया वो ये था कि उन्होंने वर्णन करते करते जब युगों का वर्णन करने लगे तो हालांकि वर्णन तो समय का करना था, लेकिन करते करते उन्होंने कह दिया कि सतयुग में सब लोग धर्म का पालन करते थे। मैत्रीमणि कहते हैं सतयुग में सारे धर्म का पालन करते थे, लेकिन जैसे जैसे युग बढ़ता गया त्रेता द्वापर तो उसमें अधर्म आना शुरू हो गया, इसीलिए सब लोग धार्मिक नहीं रहे। तो ये भी बड़ी महत्वपूर्ण बात वो सिखला रहे हैं कि हम काल का वर्णन कर रहे हैं, समय का वर्णन कर रहे हैं, तो ये जान ले कि समय के अनुसार युग के अनुसार धर्म का भी पालन करना आवश्यक है। जो भी युग धर्म हो उसका पालन आवश्यक है। तो सतयुग का जो समय था उसमें सभी लोग धर्म का पालन करते थे प्राय, तो धार्मिक अनुष्ठान होना, धर्म के जो भी कार्य हैं उनको करना सब होता था। जैसे जैसे ये युग बढ़ते गए धर्म का नाश होता गया, अब कलयुग आ गया है, बहुत थोड़ा बहुत धर्म बचा है और धीरे धीरे वो भी नाश होगा जैसे जैसे कलयुग का नाश होगा। तो प्रलय ये कई कई स्तर पर होता है, प्रलय व्यक्तिगत स्तर से लेकर ब्रह्मांड के स्तर तक, फ्रॉम इंडिविजुअल टू यूनिवर्सल, ये प्रलय होता है। तो व्यक्तिगत स्तर पर क्या प्रलय होता है, व्यक्तिगत स्तर पर एक प्रलय होता है शरीर का, जब व्यक्ति मर जाता है उसके लिए वो प्रलय है, शरीर समाप्त हो गया। फिर दूसरा प्रलय होता है, ऐसे बहुत सारे प्रलयों का वर्णन है, जैसे जब एक युग समाप्त होता है तो छोटा सा प्रलय होता है, एक मनवंतर समाप्त होता है तो एक प्रलय होता है, ब्रह्मा जी का दिन समाप्त होता है तो प्रलय होता है, ब्रह्मा जी का जीवन समाप्त होता है तो प्रलय होता है, और एक है आत्यंतिक प्रलय, और वो प्रलय क्या है, हमारे भौतिक अस्तित्व को समाप्त करना, जिस प्रलय की कामना जीव को करनी चाहिए, बाकी प्रलय की चिंता नहीं करनी चाहिए, अपने भौतिक अस्तित्व को समाप्त करने की चिंता ये हमें करनी चाहिए, और वो सही रूप में प्रलय है, मुक्ति का मार्ग है। तो ऐसे सारे काल का, युगों का, युग धर्म का, कि युग में धर्म होने चाहिए, पालन होने चाहिए, वर्णन करके फिर अब वे आगे मनुओं का वर्णन करेंगे। तो अगले अध्याय में कैसे मनु की उत्पत्ति हुई, कैसे चार कुमारों की उत्पत्ति की, तो कुमारों तथा अन्यों की सृष्टि 12वें अध्याय से प्रारंभ होगी। ये विसर्ग होगा, विसर्ग को सारांश में कहा जाएगा, और फिर उसके बाद आगे वराहदेव की कथा प्रारंभ हो जाएगी। चार कुमार आए, फिर अन्य सृष्टि हुई, फिर वराहदेव प्रकट हुए, और कैसे आगे वराहदेव की लीला, ये अब आगे के करीब 6-7 अध्यायों में 13 से लेकर 19वें अध्याय तक केवल वराहदेव की कथा भी चलेगी, और फिर उसके बाद हम लोग कपिल मुनि की कथा को प्रारंभ करेंगे। हरे कृष्ण।